ब्राजील हो गया, जर्मनी हो गया, ये टीम्स आपकी फेवरेट होंगी।
पाकिस्तान और इंडिया की क्रिकेट नहीं हो रही, क्या ये टेररिज्म कम हो गई क्या? दिस इज नॉट द जॉब ऑफ द क्रिकेटर्स।
मेजॉरिटी ऑफ द टूर्नामेंट अवेलेबल हो और बी जो पाकिस्तान आने को ओपन हो।
वर्ल्ड कप फुटबॉल के ड्रॉस का ऐलान, पाक भारत ताल्लुकात की कशीदगी, लेकिन नजला सिर्फ क्रिकेट पर ही क्यों गिरता है? और PSL की नई टीम, मुल्तान सुल्तान्स के बलन इरादे। खेल के मैदान से अब्दुलरशीद शकूर का सलाम। आइंदा साल रूस में होने वाले फुटबॉल वर्ल्ड कप में शरीक 32 टीमों की लाइनअप मुकम्मल हो चुकी है और आलमी मुकाबले के ड्रॉस आज मॉस्को में निकाले जा रहे हैं। रूस मेजबान होने के नाते वर्ल्ड कप खेलेगा, जबकि दीगर 31 टीमों ने क्वालिफाइंग का मरहला तय किया है। मैंने वर्ल्ड कप में शरीक टीमों की कुव्वत, हिकमत अमली और स्टार खिलाड़ियों के बारे में जानने के लिए जहमत दी तज्जियाकार रेहानुल हक को। रेहानुल हक से मेरा पहला सवाल था कि आलमी कप में वो कौन सी टीमें हैं जिन्हें फेवरेट का दर्जा हासिल रहेगा।
ब्राजील हो गया, जर्मनी हो गया, ये टीम्स आपकी फेवरेट होंगी। अर्जेंटीना की क्वालिफिकेशन कैंपेन इतनी अच्छी नहीं रही, यहाँ तक कि पिछले एक साल में उनके कम्पिटिटिव मैचेस के अंदर मेसी के अलावा किसी और प्लेयर ने गोल नहीं किया। डार्क हॉर्सेस की बात करें, उसमें एक टीम है जिसको सबको देखना पड़ेगा, वो है बेल्जियम। सबसे एंजॉयबल टीम बेल्जियम हो सकती है, लेकिन क्या वो फेवरेट्स हैं? डार्क हॉर्सेस हैं, फेवरेट्स नहीं है। फ्रांस एक ऐसी टीम है जिसको रेट करना चाहिए, जितना यंग टैलेंट फ्रांस ने प्रोड्यूस किया है पिछले 4-5 साल में, जिस तरह के उनके प्लेयर्स उभर कर सामने आए हैं। पॉल पॉगबा हैं, एंगोलो कांटे हैं, जो उनकी मिडफील्ड को स्ट्रेंथ देते हैं। आगे उनके अगर आप प्लेयर्स देखें तो अनकाउंटेबल नेम्स आ जाते हैं। आप देखें कि एंथनी मार्सियल जो मैनचेस्टर यूनाइटेड में खेलते हैं, उनको चांस भी नहीं मिलता फ्रांस के लिए खेलने के लिए, क्योंकि वहां पे एम्बापे हैं, डेम्बेले हैं, ग्रिएजमैन है उधर। तो उधर फ्रांस के पास बहुत ऑप्शंस हैं। जीरू और लकाजेट जैसे प्लेयर जो हैं, उनको शायद प्लेइंग टाइम भी उतना ना मिले। तो फ्रांस मेरे ख्याल में एक जो टीम है उसको देखना होगा। जर्मनी अभी भी आपको लगता है कि काफ़ी उनके पास ऑप्शंस हैं, तो डिफेंडिंग चैंपियंस हैं वो, और रशिया के अंदर वर्ल्ड कप हो रहा है, एक तो वो आदि भी हैं इन तरह की कंडीशन में खेलने के लिए। एक टीम जो इस दफ़ा मैं सोच रहा हूँ कि बड़ी सरप्राइज स्प्रिंग कर सकती है, हमेशा इंग्लैंड अपने आप को फेवरेट समझता है, ये पहला या दूसरा वर्ल्ड कप होगा शायद जब वो अपने आप को फेवरेट्स नहीं समझ रहे, लेकिन उनकी जो टीम है वो यंग है और इस टीम के अंदर पोटेंशियल है कि वो क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल तक जा सकते हैं, और उसके बाद कोई पता नहीं होता आपको।
रेहानुल हक से मैंने पूछा कि यूरोपीय टीमों के बारे में आपका क्या ख्याल है। इटली आलमी कप से बाहर हो चुका और गुज़िश्ता आलमी कप में स्पेन नॉकआउट मरहले तक नहीं पहुंच सका था, तो क्या इस बार उसमें दमखम बाकी है?
जहां तक इटली की बात की जाए तो इटली टीम इतनी अच्छी नहीं थी, ऑन पेपर भी उतनी अच्छी टीम नहीं थी। ऑल्दो स्वीडन से हारना एक उनके लिए जो है हार्ड पिल टू स्वॉलो है। बुफोन का करियर का बहुत ही खराब एंड हुआ है, आप एक्सपेक्ट करते थे कि एटलीस्ट बुफोन को एक वर्ल्ड कप में फेयरवेल मिलेगा, लेकिन वो क्वालिफाई भी नहीं कर सके। स्पेन का अब वो सिस्टम नहीं रहा, स्पेन का जो अरूज था वो उस तरह नहीं रहा, लेकिन उनकी जो राइज है उसका सूरज गरूब नहीं हुआ। 2006 के बाद जैसी उन्होंने टीम बनाई है, काफी टैलेंट उन्होंने प्रोड्यूस किया, तो स्पेन की अभी भी टीम बड़ी अच्छी है। लोपेटेगी के अंदर जो उनके नए मैनेजर हैं, उनके अंदर उनकी परफॉर्मेंसेस बड़ी ठीक रही हैं। पोर्चुगल की टीम यूरो तो वो जीत गए और वो बड़ी एक अमेजिंग अचीवमेंट थी, लेकिन वो भी एक बहुत बड़ा सरप्राइज था। पोर्चुगल की अगर आप ऑन पेपर टीम देखें तो वो इतनी स्ट्रांग नहीं नजर आती है आपको इस वक्त। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की भी जो एज है वो थोड़ी ज़्यादा हो गई है, तो उनके ऊपर रिलायंस उस तरह से नहीं कर सकते पोर्चुगल जो कि 3 से 4 साल पहले या 2 साल पहले तक कर सकते थे। तो एक तो वो इशू है, वो भी आपने देखा है कि वो हमेशा क्वालिफिकेशन के अंदर जो वो प्लेऑफ्स के रास्ते से ही आते हैं। जहां तक बाकी यूरोपियन टीम्स की बात है, जर्मनी हमेशा जो है वो फेवरेट्स में रहती है। जर्मनी की जिस तरह फुटबॉल ग्रो की है, जो 2002 के बाद उन्होंने अपना स्ट्रक्चर रिवैम्प किया था, उसके बाद से अगर आप उनकी परफॉर्मेंस देखें तो हर वर्ल्ड इवेंट के सेमीफाइनल फाइनल में वो खेल रहे होते हैं।
रेहानुल हक से मेरा आखिरी सवाल था कि बड़े खिलाड़ियों में इस बार कौन अपना रंग जमाएगा? रोनाल्डो, लियोनेल मेसी, नेमार तो है ही, क्या उनके होते हुए किसी और का चिराग भी जलेगा?
नेमार, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, मेसी की तो हमेशा बात होती है, लेकिन कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि अभी बड़े यंग हैं, जिनको इतना फॉलो नहीं किया लोगों ने। उनमें जो प्लेयर्स हैं जो मैं देखता हूँ इस वर्ल्ड कप में परफॉर्म करते हुए, किलियन एम्बापे अगर फिट रहते हैं फ्रांस के तो आप देखेंगे वो वर्ल्ड कप में शाइन करेंगे। ब्राजील की बात करते हैं तो गैब्रियल हेसोस हैं, वो बहुत उनसे उम्मीदें हैं। केविन डी ब्रुइने ऑलरेडी बहुत खूबसूरत फॉर्म के अंदर हैं अपनी टीम मैनचेस्टर सिटी के लिए, तो उनकी आप परफॉर्मेंसेस वर्ल्ड कप के अंदर जो हैं वो देखने लायक होंगी।
पाक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ICC को एक नोटिस भेजा है जिसमें उसे कहा गया है कि वो तनाजात निपटाने से मुतालिक कमेटी कायम करे जो भारत की जानिब से पाकिस्तान के साथ ना खेलने का मामला देखे। दूसरी जानिब भारत के साबिक स्पिनर बिशन सिंह बेदी ने भी ये सवाल उठाया है कि पाक भारत ताल्लुकात की कशीदगी की सजा क्रिकेट और शो बिजनेस को ही क्यों दी जाती है। दिल्ली से आदेश कुमार गुप्ता।
पाकिस्तान और इंडिया की क्रिकेट नहीं हो रही, क्या ये टेररिज्म कम हो गई क्या? दिस इज नॉट द जॉब ऑफ द क्रिकेटर्स टू डिफेंड योर बॉर्डर्स, इट्स अ जॉब ऑफ द गवर्नमेंट। मगर आपने सिर्फ क्रिकेट को और जो फिल्म इंडस्ट्री को आपने रोका, ये नहीं करना, आपने उनके साथ कोई ताल्लुक नहीं, विच इज नॉट राइट, विच इज नॉट फेयर एट ऑल। अब ये क्रिकेटर्स का कसूर नहीं है, पॉलिटिशियन को जो सोचना पड़ेगा,
सियासत को सोचना पड़ेगा। ऐसा कहने वाले कोई और नहीं, भारत के साबिक कप्तान और अपने जमाने के बेहतरीन लेग स्पिनर बिशन सिंह बेदी हैं, जिनके नाम पर दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में एक स्टैंड को जगह दी गई है। बिशन सिंह बेदी की कप्तानी में ही भारतीय टीम साल 1978 में पाकिस्तान के दौरे पर गई थी। उस सीरीज में भारत को कपिल देव जैसा शानदार ऑलराउंडर भी मिला, तो पाकिस्तानी टीम की कमान मुश्ताक मोहम्मद के हाथ में थी। तब भारत में पहली बार इमरान खान, ज़हीर अब्बास, माजिद खान, जावेद मियांदाद और वसीम बारी के नाम की गूंज भी सुनाई दी थी। रह रहकर बिशन सिंह बेदी जैसे दूसरे खिलाड़ियों के दिल की बात जुबान पर आ ही जाती है कि भारत और पाकिस्तान क्रिकेट के मैदान में आमने सामने हों। लेकिन कैसे हों? अब एक उम्मीद नजर आती है जब अगले साल 9 टेस्ट टीमें 2 साल की टेस्ट चैंपियनशिप खेलेगी, जिसमें 3 बाहर और 3 घरेलू जमीन पर खेली जाएंगी। इसे लेकर ICC की एक बैठक 7 दिसंबर को सिंगापुर में होनी है। भारत के खिलाफ 6 टीमें खेलेंगी और अगर पाकिस्तान उन टीमों में नहीं होगा तो ना तो भारत के पॉइंट कटेंगे और ना ही पेनल्टी लगेगी। लेकिन भारत पाक मुकाबलों की उम्मीद की लो में जगबगाहट तो तभी होगी जब सरकार अपनी मंजूरी का तेल डालेगी। क्रिकेट एक्सपर्ट विजय लोकपल्ली कहते हैं,
इसमें मेरा एक सीधा मानना यह है कि इंडिया को अगर पाकिस्तान से खेलना है तो BCCI और PCB नहीं डिसाइड करेंगे, ये रेस्पेक्टिव गवर्नमेंट होती है। पाकिस्तान के साथ तो जब भी आपको खेलना पड़ेगा गवर्नमेंट का क्लियरेंस नहीं होगा, खिलाड़ी नहीं डिसाइड कर सकते हैं। ये मैं मानता हूँ कि फौज का अपना रोल है, खिलाड़ियों का अपना रोल है, लेकिन गवर्नमेंट का भी रोल है। अगर गवर्नमेंट कहती है आप नहीं खेलोगे तो नहीं खेलोगे, और आप बगैर परमिशन के आप खेल भी नहीं सकते हो।
सरहद पर फौज अपना काम करती रहेगी और सरकार भारत पाक मुकाबले टालती रहेगी, लेकिन अगर ICC टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल कहीं भारत और पाकिस्तान के बीच ही होना तय हो गया तो फिर क्या होगा? विजय लोकपल्ली,
फाइनल स्टेज में पहुंचने के बाद अब ये आपको मालूम पड़ता है कि आप एक दूसरे के साथ नहीं खेल सकते हो, ये तो बहुत खराब होगा कि आपका पूरा टूर्नामेंट खत्म होने को आ गया और फाइनल आप एक दूसरे से नहीं खेल रहे हो। तो ये मुद्दा तभी हल होगा जब गवर्नमेंट अलाउ करेगी। मैं समझता हूँ न्यूट्रल वेन्यू पे गवर्नमेंट पाकिस्तान से मैच के लिए अलाउ करेगी ही नहीं, अनलेस की अगर वो ICC का टूर्नामेंट है।
ये कैसी सियासत है जिसके खेल में एक ऐसा खेल फंस कर रह गया है जिसके बिना दो मुल्कों की ना तो सुबह होती है ना ही शाम।
पाकिस्तान सुपर लीग में इस मरतबा 6 टीम का इजाफा हुआ है जो मुल्तान सुल्तान्स है। मुल्तान सुल्तान्स ने वसीम अकरम को डायरेक्टर क्रिकेट मुकर्रर किया है, जबकि ऑस्ट्रेलिया के टॉम मूडी कोच और पाकिस्तान के शुएब मलिक कप्तान हैं। मैंने टीम की मुतवक्के कारकर्दगी पर बात करने के लिए मुल्तान सुल्तान्स के जनरल मैनेजर क्रिकेट ऑपरेशन सैयद हैदर अजहर से राब्ता किया और उनसे मेरा पहला सवाल था कि PSL में नई टीम के तौर पर शमूलियत से मुल्तान सुल्तान को फायदा हुआ है या नुकसान।
हम जिस कन्विक्शन के साथ आए हैं, जिस प्लानिंग और जिस स्ट्रेटजी के साथ आए हैं, हम लोग बहुत इस पे मुतमईन हैं कि हम इंशाल्लाह ताला हमारी जो काविश होगी वो यही होगी कि हम पहले सीजन में ही कोई अच्छा इम्पैक्ट करें। हमारी तो नियत खैर जीतने की है। जब आप 6 टीम बनकर आते हैं, एक्सपेंशन टीम बनकर आते हैं किसी भी ड्राफ्ट में, तो आपको कोई थोड़े से डिसएडवांटेजेस होते हैं। हमने उन डिसएडवांटेजेस पर इनफैक्ट कैपिटलाइज किया और हमने उन्हें अपनी एडवांटेज खुद बनाया। पहले आपको याद होगा जो टीमों ने प्लेयर्स रिटेन करने थे वो सिर्फ 10-10 प्लेयर्स रिटेन कर सकती थी।
तो एज एन एक्सपेंशन टीम जो हमने अपने पहले 10 खिलाड़ी चूज करने थे वो सिर्फ रिलीज्ड प्लेयर्स में से करने थे। तो हम बैठे जी, हमने बैठ के पूरा असेस किया, हमने देखा कि कौन कौन सी टीम पोटेंशियली किस किस को किस कैटेगरी में रिलीज कर सकती है और उसके मुताबिक फिर हमने स्ट्रैटेजी बनाई। जहां पर फ्रेंचाइज क्रिकेट में कोई भी फ्रेंचाइज सक्सेसफुल जहां भी होती है वो ऐसी होती है जहां पर एक स्ट्रांग कोर होता है पाकिस्तानी खिलाड़ियों का। तो हमारा पहला जो एक्सपेंशन ड्राफ्ट में मेन फोकस था वो ये था कि हम अभी ही अपने 9-10 खिलाड़ियों में ऐसी कोर तैयार कर लें कि हमारे कम से कम 8 या 9 लड़के स्टार्टिंग 11 वाले पहले ही हमें मिल जाए।
हैदर अजहर से मेरा अगला सवाल था कि पाकिस्तान सुपर लीग के कुछ मैचेस पाकिस्तान में होने की बातें भी हो रही हैं, तो क्या आपके गैर मुल्की खिलाड़ी पाकिस्तान आने के लिए तैयार होंगे?
हमें PSL ने जब भी प्लेयर्स लिस्ट दी थी तो हमें 7 अवेलेबिलिटी बताई हुई थी उनकी। अगर कोई इंटरनेशनल एंगेजमेंट है या कुछ के अगर डोमेस्टिक एंगेजमेंट्स हैं हमें उनकी डेट्स भी पता थी अवेलेबिलिटी की, और हमें ये भी पता था कि कौन से प्लेयर्स ओपन हैं टू द आइडिया ऑफ कमिंग टू पाकिस्तान और कौन से हैं जिन्होंने फ्लैट आउट नो किया हुआ है। वसीम भाई की स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन थी ड्राफ्ट के वक्त कि आपने उन्हीं प्लेयर्स को कंसिडर करना है जो आपको ए थ्रू आउट द ड्यूरेशन ऑफ द टूर्नामेंट या सिग्निफिकेंट मेजोरिटी ऑफ द टूर्नामेंट अवेलेबल हों और बी जो पाकिस्तान आने को ओपन हो।
हैदर अजहर से मेरा आखिरी सवाल था कि टॉम मूडी को कोच बनाने की कोई खास वजह?
टॉम मूडी को पहले दिन से आइडेंटिफाई किया हुआ था मालिका ने और वसीम भाई ने। उनका मानना था कि देखिए टॉम मूडी का अपना जो करियर है वो सबके सामने है, वर्ल्ड कप विनर। फिर उनका अगर आप कोचिंग करियर देखें तो वो अब तक IPL भी जीत चुके हुए हैं, वो कैरिबियन प्रीमियर लीग के कंसल्टेंट भी हैं, वो बिग बैश में भी कोच करते हैं, वह बांग्लादेश प्रीमियर लीग में रंगपुर राइडर्स के साथ भी हैं। तो ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड नेम्स इन फ्रेंचाइज क्रिकेट और ये काफ़ी ज़्यादा खिलाड़ी उन्हें देख भी चुके हुए हैं, उन्हें ऑब्जर्व भी कर चुके हुए हैं एंड सो वी वर वेरी वेरी कॉन्फिडेंट विद दिस चॉइस।
इसी के साथ अब अब्दुल रशीद शकूर को इजाज़त दीजिए।